हरे कृष्णा। सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूं कि नासिक के इस पुण्य भूमि में, नासिक के जो भक्त वृंद है उनके सौजन्य से आप लोगों की सेवा करने का यह अवसर मिला है। वास्तविक रूप में भक्तों के वजह से ही हमें भगवान की कृपा मिलती है और भगवान की सेवा मिलती है। तो श्रील प्रभुपाद जी की असीम अनुकंपा के कारण जो आज हम यहां से प्रारंभ करने वाले हैं, श्री कृष्ण कथामृत सप्ताह, इसमें विशेष रूप से हमने ये सोचा कि अक्सर जन्माष्टमी के दिन और जन्माष्टमी के अगले दिन हम भगवान श्री कृष्ण की जन्म की लीला श्रवण करते हैं और जन्म के बाद जो नंद गोकुल में नंदोत्सव मनाया गया उसके विषय में श्रवण करते हैं उस दिन। परंतु जन्माष्टमी के पूर्व क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण जन्मे, उसके पीछे कौन कौन कारण थे? जैसे कि भगवान की जन्म की लीला और नंद की आनंद भयो की लीला तो हम सुनते हैं। तो भगवान जब नंद गोकुल गए तो वहां पर तो आनंद ही आनंद था, इसलिए हम गाते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। परंतु जन्म के पूर्व जो अब का समय है, जन्माष्टमी से पहले, जन्म के पूर्व वसुदेव और देवकी ने कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना किया, वहां पर कोई आनंद भयो नहीं हो रहा था। जन्म के पूर्व कंस वो इस प्रकार के कहर ढा रहा था वसुदेव और देवकी के ऊपर कि उसके विषय में हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना विशेष रूप से वसुदेव और देवकी को करना पड़ा भगवान कृष्ण को इस धरातल पर अवतीर्ण होने के लिए। तो हमने सोचा कि वहां से कथा प्रारंभ करते हैं और ये शुरुआत है दशम स्कंद की, जिसे भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव श्रीमद् भागवत में हुआ दशम स्कंद में। और दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव से पहले जो कथा है वो बहुत विस्तार से बताई गई है। सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई है परीक्षित महाराज को, तो उससे हम अपने साधना भक्ति में क्या शिक्षा ले सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में, अपने जीवन में हम उनको अवतीर्ण होने के लिए आतुरता दिखाएं, जैसे वसुदेव और देवकी ने जो किस प्रकार की आतुरता उन्होंने दिखाई और कितना बड़ा उन्होंने त्याग दिखाया अपने जीवन में कि तब जाकर भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए। तो हमने सोचा कि वहां से शुरू करेंगे और भगवान कृष्ण की जन्म लीला और नंदोत्सव की लीला हम उस दिन करेंगे जन्माष्टमी के दिन। तो शुरुआत हम करेंगे दशम स्कंद जिस प्रकार से शुरू होता है और फिर हम बीच में चर्चा करेंगे कैसे भगवान श्री कृष्ण ने कुछ असुरों का वध किया और उसके पीछे आचार्य क्या हमें शिक्षा देते हैं उन असुरों के संबंध में, जैसे पूतनावध, तृणावर्तवध, इन सब की कुछ जो लीला है उसकी हम चर्चा करेंगे, और फिर जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म की लीला, और किस प्रकार से भगवान को मथुरा से गोकुल ले जाया गया और गोकुल में क्या हुआ, उसकी लीला हम उस दिन करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम का जो दशम स्कंध है, ये भगवान श्री कृष्ण का जो पूर्ण चंद्र रचित मुख है उसकी तुलना इससे की गई है। ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण के सारे जो अंग हैं वो पूर्ण है, परंतु विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण का जो मुख चंद्र है वो सर्वोपरि कहा गया है। इसीलिए दशम स्कंद की तुलना भगवान श्री कृष्ण के मुख से की गई है। और आचार्यों ने कई टीकाएं लिखी हैं केवल दशम स्कंद के ऊपर। विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने पूरे दशम स्कंद पर एक अलग से टीका लिखी, इसका नाम है सारार्थ दर्शिनी। और अन्य जो हमारे आचार्य हुए हैं उन्होंने कई टीकाएं लिखी हैं भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन मथुरा लीला और द्वारका लीला के ऊपर। तो नवम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सूर्यवंश और चंद्रवंश के विषय में कहते हैं कि कौन कौन से राजा हुए सूर्यवंश में, और प्रभु रामचंद्र जी की कथा आती है उसमें, और कौन कौन से राजा हुए चंद्रवंश में। तो जब चंद्रवंश के विषय में ये उल्लेख सुखदेव गोस्वामी करते हैं नवम स्कंद के अंत में, तो उसमें सुखदेव गोस्वामी एक थोड़ा सा एक हिंट देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ इस चंद्रवंश में। और जैसे ही परीक्षित महाराज यह सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ यदुवंश में, चंद्रवंश में, तब फिर प्रारंभ होता है दशम स्कंद वहां से। तो परीक्षित महाराज ने अब केवल एक हिंट सुना है कृष्ण के विषय में, और परीक्षित महाराज तुरंत वो सुखदेव गोस्वामी को वहीं पर थोड़ा रोकते हैं और फिर प्रश्न पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण के अवतार के विषय में कि आप कहीं उससे आगे मत चले जाना, कि इसी को सुनने के लिए तो मैं यहां पर गंगा के तट पर आपके समक्ष बैठा हूं, कि मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब आप भगवान श्री कृष्ण, साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो अवतारी हैं, उनकी लीला सुनाना प्रारंभ करेंगे। तो जैसे ही उनको यह पता लगा कि अभी कृष्ण के विषय में ये सुनाने वाले हैं तो आगे ना चले जाएं, इसलिए परीक्षित महाराज वो बीच में रोक कर कहते हैं यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तम तत्राम अंशेन अवतीर्णस्य विष्णुर वीर्याणि संशन। यहां पर बहुत ही सुशिक्षित भाषा में परीक्षित महाराज एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं कि अभी मृत्यु काल आ रहा है तो तुरंत सुखदेव गोस्वामी को ऑर्डर देते हुए कह रहे हैं कि सबसे पहले कृष्ण की लीला सुनाओ, क्योंकि अभी तक्षक कभी भी आकर काट सकता है। क्योंकि दशम स्कंद जब प्रारंभ हो रहा है तब ऑलरेडी 4 दिन बीत चुके हैं, और कितने दिन बाकी थे परीक्षित महाराज के, केवल 3 दिन बाकी थे। तो 4 दिन अब यहां पूरे हो चुके हैं और केवल 3 दिन बाकी है जब कृष्ण लीला प्रारंभ हो रही है। अब तो देखिए शारीरिक रूप से भी परीक्षित महाराज की स्थिति कैसी रही होगी। हम लोग तो कृष्ण लीला अभी शुरू कर रहे हैं, तो पूरा हम लोग तो नाश्ता खाना सब कुछ खाकर आए हैं आज का, और इसके बाद भी मिल जाएगा। लेकिन परीक्षित महाराज की स्थिति कैसी थी? परीक्षित महाराज ने एक जल बूंद नहीं पिया और एक घास कोई प्रसाद का नहीं खाया और न एक क्षण वो सोए, तो न एक बूंद जल पिया, न एक घास कुछ प्रसाद का खाया, न एक क्षण वो झपकी भी लिए। ऐसा नहीं था कि सुखदेव गोस्वामी को बीच बीच में परीक्षित महाराज को उठाना पड़ता था, थोड़ा अभी कृष्ण लीला शुरू हो रही थोड़ा जगो। बिना पलक झपके परीक्षित महाराज वो इस प्रकार से श्रवण कर रहे थे और इतने वो आतुर थे और ये उनकी स्थिति। तो अब तुरंत जैसे ही कृष्ण लीला प्रारंभ होने वाली है तो उन्होंने बहुत ही सुशिक्षित भाषा में, यहां पर लिखा हुआ है कि उन्होंने कोई ऑर्डर जमाते हुए ये नहीं पूछा सुखदेव गोस्वामी को। तो सबसे पहले हमें परीक्षित महाराज से सीखना चाहिए कि कृष्ण लीला श्रवण कैसे करनी चाहिए। तो परीक्षित महाराज वो ये नहीं कह रहे, वो कहते हैं यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तम। आप मुनि सत्तम हैं, तो सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी को मुनि सत्तम, मुनियों में आप सबसे उत्तम हैं, क्योंकि मुनियों में आप सबसे उत्तम हैं इसलिए आप जानते हैं कि मेरे क्या प्रश्न हो सकते हैं और उन सब प्रश्नों का उत्तर आप जानते हैं, इसलिए आप दीजिए उन प्रश्नों का उत्तर कृष्ण के विषय में। क्योंकि यदोश्च धर्मशीलस्य, उस यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ और अवतार किसके साथ हुआ? तत्र अंशेन अवतीर्णस्य, अपने अंश अवतार श्री बलराम जी, जिनका आविर्भाव दिवस हमने अब बनाया कुछ दिन पहले। तो यहां पर सबसे पहले शिक्षा हम परीक्षित महाराज से लेते हैं कि कैसी वाणी होनी चाहिए। वाणी एकदम सुसज्जित होनी चाहिए, सज्जनों की वाणी होनी चाहिए। जैसे नीति के एक श्लोक में कहा गया है कि वाणी का प्रभाव कितना होता है, जिह्वाग्रे वसति लक्ष्मी, जिह्वाग्रे मित्र बांधव, जिह्वाग्रे मरणम प्राप्तम, जिह्वाग्रे मोक्ष लक्षणम। इस सुंदर श्लोक में कहा गया है कि जिह्वा के अग्र भाग पर निर्धारित है कि व्यक्ति कितना लक्ष्मी अर्जित करेगा। हाँ? जैसे जो व्यापारी होते हैं वो इतना मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, ये जिह्वा के वजह से। अच्छा बोलना, उनको सबसे अच्छा ट्रेनिंग मिलता है कैसे बोलना चाहिए ग्राहकों के साथ, और जिस प्रकार से वो मीठी बोली बोलते हैं, आपके लिए तो मैं घाटे में जा रहा हूं, केवल आप ही के लिए ये जो है मैं इतने कम दाम में दे रहा हूं, नहीं तो आप किसी को कहना मत, लेकिन आपके लिए, और वो सबको कहते हो। तो कहा गया है इस नीति के श्लोक में, जिह्वाग्रे वसति लक्ष्मी, जिसको अच्छा बोलना आता है वो अच्छा लक्ष्मी कमा सकता है। और आप लोग सब जानते होंगे तो कहने की आवश्यकता नहीं है। और फिर कहा गया है जिह्वाग्रे मित्र बांधव, किस जिह्वा के अग्र भाग पर जिह्वा कैसे हम उपयोग में लाते हैं वो निर्धारित करता है कितने हमारे मित्र रहेंगे और कितने हमारे दोषी या हमारे शत्रु रहेंगे, कैसी हमारी बोली है उसके ऊपर निर्धारित करता है। जैसे एक बार एक राजा था, तो वो अपने मंत्री और सैनिक को लेकर शिकार के लिए गया। तो अब संध्या का समय हो गया और वो तीनों बिछड़ गए। तो राजा कहीं जंगल में अकेला पड़ गया, मंत्री कहीं अकेला पड़ गया और जो सैनिक था वो कहीं अकेला पड़ गया। और उस जंगल में एक साधु महात्मा अपनी कुटिया में रहा करते थे, और वो साधु महात्मा वो अंधे थे। तो अब हुआ ऐसा कि तीनों एक एक कर इस साधु महात्मा की कुटिया से गुजरे तो देखा कि एक ही मनुष्य है जो यहां पर रह रहा है ये साधु महात्मा। तो थोड़ा पूछा जाए कि देखा है कि हमारे राजा को या मंत्री को या सैनिक को। तो साधु महात्मा अपनी कुटिया में थे तो सबसे पहले सैनिक वहां से गुजरा। तो सैनिक ने देखा कि ये साधु महात्मा है अंधे दिखते हैं। तो सैनिक गया और साधु महात्मा से इस वाणी में पूछता है, ए अंधे, यहां से किसी को जाते हुए देखा? तो वो इस वाणी में उस साधु को पूछता है, ए अंधे, किसी को जाते हुए देखा यहां से? अब साधु महात्मा ने कहा, तुम ही कह रहे हो मैं अंधा हूं, और फिर पूछते जाते हुए देखा? अरे सुना किसी को कोई घोड़े की आवाज यहां से गुजरते हुए। कहा, नहीं भाई, मैंने किसी की आवाज नहीं सुनी। तो सैनिक आगे चला गया। फिर उसके बाद मंत्री आया तो मंत्री ने देखा, अरे साधु महात्मा है कुटिया में है अकेले रहते हैं। तो मंत्री आकर बोलता है, ए सूरदास, जैसे अंधों को सूरदास भी कहा जाता है क्योंकि सूरदास भी अंधे थे, ए सूरदास, किसी को यहां गुजरते हुए सुना किसी की आवाज यहां से? तो कहा कि एक व्यक्ति गुजरा है कुछ समय पहले यहां से। तो वो चला गया, किस दिशा में गया बता दिया, तो उस दिशा में वो मंत्री चला गया। उसके पश्चात फिर राजा, तो राजा ने देखा, अरे भाई साधु महात्मा के दर्शन हुए हैं। तो राजा सबसे पहले आकर अपना दंडवत देता है और दंडवत देते हुए पूछता है कि ये साधु महात्मा जी, मेरा दंडवत स्वीकार कीजिए, मेरा अहोभाग्य कि आज आपका दर्शन हुआ इस जंगल में, और सही में मेरा दिन बहुत पुण्यवान रहा है कि आपका दर्शन हुआ। ऐसे वो गुणगान करने लगा पहले तो साधु महात्मा का, और उसके पश्चात पूछा कि क्या आपने सुना कोई यहां से गुजरते हुए? तो साधु महात्मा को कहता है कि हाँ, सबसे पहले आपका सैनिक गुजरा, उसके बाद आपका मंत्री, और आप आए हैं राजन आज। तो राजा ने अपना परिचय नहीं दिया था कि मैं राजा हूं। तो राजा ने पूछा कि आप तो देख नहीं सकते, तो आपने कैसे ये जान लिया कि सबसे पहले मेरा सैनिक गया होगा, उसके पहले मंत्री, और अब मैं राजा हूं? ने आपकी वाणी से और उनकी वाणी से, जो सबसे पहले था उसकी वाणी से मुझे पता लग गया कि ये कोई सैनिक साधारण होगा, और फिर दूसरे वाले की वाणी थोड़ी ठीक थी तो वो आपका मंत्री रहा होगा, और आपकी वाणी इतनी अच्छी है तो आप तो राजा ही होने चाहिए, राज परिवार का व्यक्ति ही इस प्रकार की वाणी बोल सकता है। तो यहां पर परीक्षित महाराज, जो भी इतने बड़े वंश से, और उनके पूर्वज कौन रहे, अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज, ये सब, तो उनके वंश के परीक्षित महाराज, तो उनकी वाणी कितनी मधुर होगी। तो सबसे पहले वो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी को प्रेरित कर रहे हैं कृष्ण लीला सुनाने के लिए, और फिर वो कहते हैं, वो गुणगान करते हैं भगवान कृष्ण का कि सुखदेव गोस्वामी को प्रेरणा देने के लिए मुझे कृष्ण का गुणगान करना होगा पहले, कि मैं जो कुछ कृष्ण के विषय में जानता हूं वो यदि मैं सुनाऊं सुखदेव गोस्वामी को कि ये भगवान श्री कृष्ण, जिनको मैं कब से जानता था, जब मैं अपनी माता के गर्भ में था तब से इनको मैं जानता हूं, और इन्होंने क्या कुछ नहीं किया मेरे और मेरे परिवार वालों के लिए, तो पहले वो गुणगान करते हैं, अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यानि विश्वात्मा तानिनो वद विस्तरात। वो कहते हैं कि उन भगवान श्री कृष्ण के विषय में आप उनकी कथा सुनाइए जो भगवान भूत भावना है। तो यहां पर परीक्षित महाराज वो भगवान श्री कृष्ण को भूत भावना कहते हैं, और हमारे आचार्यगण इस पर टीका देते हैं कि भगवान को भूत भावना क्यों कहा गया है। भावना का एक और अर्थ होता है प्रेम, जैसे कृष्ण भावना अमृत संग, तो भगवान उनको भूत भावना इसलिए कहा गया है यहां पर कि वो सबके हृदय में कृष्ण प्रेम की भावना जागृत करने में सक्षम है। तो परीक्षित महाराज का यह प्रश्न पूछने का कारण यह था कि मेरे अंदर कृष्ण प्रेम नहीं है, और यदि आप भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनाओगे और उनका नाम है भूत भावना, तो उनके विषय में श्रवण करने से मेरे अंदर वो भावना कृष्ण प्रेम जागृत होगी। और भूत भावना का एक और अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण वो सारे भूतों का पालन कर रहे हैं। जैसे हम सब जीवात्माओं को भगवद गीता में जीव भूत कहा गया है, तो हम सब भगवान के अंश हैं, और भगवान जो विश्वात्मा है, भूत भावना है, इनके वजह से हमारा पालन हो रहा है। और यदि हम इसे भूल जाएं, तो ये शुरुआत है। तो परीक्षित महाराज इससे ये संकेत दे रहे हैं कि मैं ये चार दिनों तक जी रहा हूं बिना खाए पिए सोए, क्योंकि वो भूत भावना है, वो मुझे अंदर से जिला रहे हैं, क्योंकि वो मुझे अंदर से जिला रहे हैं इसलिए मैं जी पा रहा हूं, क्योंकि वो भूत भावना है। इसलिए वो कहते हैं तानि नो वद विस्तरात। अब देखिए इनकी स्थिति, देखिए कि चार दिन तक खाए पिए सोए नहीं है, और हो सकता है कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को ये कह दें कि अरे भाई अभी आप कृष्ण लीला अभी शुरू कर रहे हो, जब आपको शुरू करनी थी जब मैं आया था, अब इतनी तपस्या पहले करवा दी कि एक बूंद जल नहीं पिया है, कुछ खाया नहीं, सोया नहीं, और अभी आप तो थोड़ा जल्दी गाड़ी भगाओ, ये कृष्ण लीला को थोड़ा जल्दी करो ताकि पूरा सात दिन पूरा हो जाए और हम फिर थोड़ा कुछ महाप्रसाद भंडारा वगैरह करें यहां पर। तो यहां पर सुखदेव परीक्षित महाराज कहते हैं विस्तार से, विस्तारत, विस्तार से सुनाइए आप, कुछ भी काट छाट नहीं होना चाहिए। वो पहले से सुखदेव गोस्वामी को कह रहे कि काट छाट नहीं होना चाहिए। अब देखिए कई बार हम जब भगवान कृष्ण की लीला श्रवण करने बैठते हैं तो मालूम है कि हर साल ये जन्माष्टमी तो मनाते ही, और हर साल ये सारी लीलाएं तो सुनी है, अभी कंस आएगा देवकी के साथ और वो पूतना वध ये सब, तो जैसे ही अभी हम शुरू करें तो अब भगवान ने पूतना का वध कैसे किया, अभी हम लीला शुरू करेंगे, ऐसे भगवान कहूं अरे तो पूतना वध तो सुना है, कितनी बार पूतना का वध करेंगे। तो कई बार हम जो नए व्यक्ति आते हैं उनको थोड़ा आगे बैठो, पूतना वध सुनो, आगे बैठ के पूतना वध सुनो, और वो पूछे प्रभु जी आप कहां जा रहे हैं, नहीं आप आगे बैठो, आपके लिए जरूरी है पूतना वध सुनना, क्योंकि हमने सुन ली, प्रभु जी ने सुन लिया है, प्रभु जी ने बहुत बार पूतना वध सुन लिया है। अब देखिए यदि हम हमारी तुलना परीक्षित महाराज से करें तो ठीक है, हम हमारी हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा या कुछ साल बीत गए होंगे भक्ति में, पांच साल, छह साल, दस साल बीत गए होंगे भक्ति में, और यदि हम पूछें कि यहां पर कितने हैं जो हैं जिनका परिचय ये कृष्ण भावनामृत संघ से, पुस्तकों से हुआ, कितनों का परिचय पुस्तकों से हुआ, हाथ उठाइए, किसी का भी पुस्तकों से नहीं हुआ, अच्छा कुछ है, अच्छा कितनों का परिचय आपके किसी मित्र ने आपको यहां पर लेकर आए, अच्छा बहुत है ऐसे, कितनों का परिचय हरिनाम संकीर्तन से हुआ, केवल हरिनाम सुनकर आप आकर्षित हो गए, आ गए हरिनाम संकीर्तन, कितनों का परिचय गीता कोर्स या आ गए मंदिर में या ना कहीं कोई हरे कृष्णा सत्संग चल रहा है और पता लगा कि यहाँ पर ये सब कुछ दिया जा रहा है। बहुत लोग ऐसे भी हैं। अब परीक्षित महाराज का परिचय कब और कहाँ हुआ ये थोड़ा हम देखना चाहेंगे कि परीक्षित महाराज का परिचय किसने किया, भगवान श्री कृष्ण से परिचय परीक्षित महाराज का किसने किया? स्वयं भगवान कृष्ण, स्वयं भगवान कृष्ण ने अपना परिचय परीक्षित महाराज को दिया। कोई है यहां पर? स्वयं भगवान कृष्ण आपको आकर लेकर यहां पर चलो आज थोड़ा हरे कृष्ण सत्संग में। हम में से कोई इतना वरिष्ठ है कि जिसका परिचय स्वयं भगवान कृष्ण ने दिया हो, अपने आप का परिचय खुद परीक्षित महाराज को दिया, और कहां पर दिया, कितने साल पहले? गर्भ में। गर्भ में परीक्षित महाराज का इंट्रोडक्शन हो गया था कृष्ण भावनामृत संघ से। कोई है यहां पर जिसका इंट्रोडक्शन गर्भ में हुआ भगवान श्री कृष्ण से? हालांकि अब जो हमारे इस संघ में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो तो हालांकि बहुत भाग्यशाली हैं कि उनको महाप्रसाद गर्भ में ही मिलता है और भगवान का कीर्तन कथा सब गर्भ में ही उनको मिलता है, तो बहुत भाग्यशाली हैं। तो हम उनसे आशा रखते हैं कि आगे चलकर वो परीक्षित महाराज जैसे बने तो उनको उनके लिए रोल मॉडल परीक्षित महाराज होने चाहिए। तो ये आप लोग सब उनको बताते रहिए कि तुम्हारे लिए रोल मॉडल है परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज का परिचय, इतने सीनियर परीक्षित महाराज हैं कि उनका परिचय हुआ गर्भ में, और वो यहां पर भगवान कृष्ण को पर्सनली जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से भगवान कृष्ण को जानते हैं, और वो कहते हैं कि विस्तार से आप सुनाइए उनके बारे में, कोई कांट छाट मत कीजिए। तो ये शिक्षा हम परीक्षित महाराज से हमें लेनी चाहिए कि कृष्ण जन्म से पहले जब कृष्ण लीला हम श्रवण करते हैं तो हमारे मन में यह धारणा होनी चाहिए कि मैं श्रवण करूंगा विस्तार से। ऐसा नहीं कि यहां वहां केवल जो मेन पॉइंट है वो बताइए जो हमने कभी सुना नहीं। तो आगे फिर परीक्षित महाराज श्रवण के विषय में गुणगान कर रहे हैं। अभी तो भगवान कृष्ण के विषय में किया और आगे भी करेंगे भगवान कृष्ण के विषय में। तो सुखदेव गोस्वामी को थोड़ा वो बोले कि आप थोड़ा रुकिए, आप मुझसे सुनिए, थोड़ा मुझसे सुनिए भगवान कृष्ण का गुणगान, ताकि मैं आपको प्रेरित करूं कि आप फिर और ज्यादा, जैसे कई बार ऐसा होता है कि नहीं, जैसे दो लोग झगड़ा शुरू करते हैं तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रेरित करता है कुछ बोलकर, बोले तुम थोड़ा चुप रहो मेरा सुनो, तो वो प्रेरित करता है और कुछ ऐसी अपशब्द बोलता है और उसके बोलने के वजह से फिर वो शुरू करता है कि अब मैं बताता हूं। तो वैसे ही यहां पर ये एक भौतिक उदाहरण है, परंतु आध्यात्मिक उदाहरण ये हुआ कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को रोककर प्रेरित कर रहे हैं कि ये कृष्ण के विषय में जिनका परिचय मेरे गर्भ में, मेरी माता के गर्भ में हुआ था, उनके विषय में। तो अब श्रवण के विषय में आगे, ये जो बहुत एक प्रसिद्ध श्लोक है जो परीक्षित महाराज जो कि श्रवण आचार्य हैं, अलग अलग जो हमारे नवधा भक्ति के आचार्य हुए हैं उनमें से परीक्षित महाराज कौन है? श्रवण आचार्य। और परीक्षित महाराज ये श्रवण के विषय में श्लोक कहते हैं, निवृत्त तर्शैर उपगीयमानात् भवौषधाच्छोत्र मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्। तो कहते हैं कि ये जो भगवान श्री कृष्ण का लीला श्रवण है, ये लीला श्रवण कौन व्यक्ति है जो कर सकता है और कौन व्यक्ति है जो नहीं कर सकता, दोनों के विषय में कहते हैं। तो सबसे पहले वो कहते हैं निवृत्त तर्शेर उपगीयमानात्, वो व्यक्ति जो इस भौतिक संसार की जो तरसा है, तृष्णा है, उससे निवृत्त हो चुके हैं, वो व्यक्ति वास्तविक रूप में भगवान श्री कृष्ण की लीला का श्रवण कर सकते हैं। तो जो तृष्णा इस भौतिक संसार की हम जानते हैं, यदि कृष्णा को पाना है तो तृष्णा से निवृत्त होना है। और इस भौतिक संसार की जो तृष्णा है, ये जो तरसा जिसे कहते हैं लिप्सा, ये इतनी ज्यादा प्रगाढ़ है हमारे अंदर, क्योंकि इतने जन्म जन्मांतर तक इस तृष्णा को संतुष्ट करने में यहां वहां योनियों में भटक रहे थे हम। तो और किस प्रकार की तृष्णा, यहां पर कहते हैं कि भव औषधि, कि ये जो औषधि है भगवान कृष्ण की लीला श्रवण, ये औषधि हमारे बीमारी को दूर करने वाली है। तो इस तृष्णा की तुलना बीमारी से की गई है। परीक्षित महाराज उसको एक बीमारी की तुलना दे रहे हैं ये तृष्णा को। अब इस भौतिक संसार में लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं, उसका विज्ञापन कर रहे हैं कि तृष्णा को बढ़ाओ। बंबई में चारों तरफ ये जो बिलबोर्ड हैं, और यहां पर भी मैं देख रहा था, ये चारों बिलबोर्ड में क्या वो लोग प्रदर्शित कर रहे हैं, टीवी में, बिलबोर्ड में, सब जगह पेपरों में, कि कैसे ये जो तृष्णा है इसे कम मत करो, बढ़ाते रहो इस तृष्णा को, जितना हो सके उतना ये टीवी देखो, जितना हो सके उतना न्यूज़पेपर पढ़ो, जितना हो सके वो उसमें लिखा जाता है कीप टॉकिंग, बात करते रहो, चाहे कुछ नहीं है बात करने के लिए, करते रहो कुछ ना कुछ, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ प्रजल की बातें करते रहो। और कितनी तृष्णा रहती है हमारे अंदर, कुछ बोलने की फालतू बातें, कुछ देखने की फालतू चीजें, कुछ चखने की फालतू चीजें। तो ये सारी जो तृष्णाएं से जो मुक्त होता है, परीक्षित महाराज कहते हैं वो उपगीयमानात, उप यहां पर उप का अर्थ है निरंतर रूप से, और गीयमानात भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन वो निरंतर रूप से कर सकता है। और किस प्रकार से ये औषधि लेनी है, परीक्षित महाराज कहते हैं ये जो औषधि है भगवान श्री कृष्ण के लीला श्रवण की औषधि, ये लेनी है श्रोत्र मनो अभिरामा, ये श्रोत्र चक्षु से लेनी है, ये हमारे जो श्रोत्र हैं कान, ये कान के अंदर डालना है ये मेडिसिन, और ये जब हम कर्ण के अंदर डालते हैं तो मनो अभिरामा, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को परीक्षित महाराज कहते हैं कि वो मन को अभिराम देने वाली है। जैसे कि इस भौतिक संसार में लोग मनोरंजन में कितना टाइम बिताते हैं, आज टीवी में मनोरंजन का कार्यक्रम है, सारे जो कार्यक्रम है मनोरंजन का कार्यक्रम होते हो, मन को रंजन देने वाले। तो यहां परीक्षित महाराज कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति तृष्णा में भी है गिरा हुआ, और यदि वो केवल अपना जीवन मनोरंजन में बिताने के लिए उसने ये व्रत लिया है कि मेरे मन को रंजन के लिए जो कुछ होगा वहां पर मैं जाऊंगा, वह देखूंगा, वह सुनूंगा, वह चखूंगा, तो यहां पर परीक्षित महाराज कहते हैं कि सब मनोरंजन भी मिलेगा कृष्ण लीला में। यदि किसी को पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है तो कृष्ण लीला में से जो पॉलिटिक्स है वैसा कोई पॉलिटिक्स नहीं मिलेगा। दुर्योधन, कर्ण, पांडवों के बीच में जो पॉलिटिक्स हुआ और कृष्ण ने किस प्रकार से उसका संहार किया कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, ऐसा पॉलिटिक्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो कोई यदि उसमें इंटरेस्टेड है तो फिर भी श्रीमद् भागवतम उसके लिए भी है। यदि कोई व्यक्ति सर्कस देखने में बहुत इंटरेस्ट है तो भगवान श्री कृष्ण के जैसा सर्कस कौन कर सकता है। कालिया के फनों के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने जो नृत्य किया, कौन सा ऐसा सर्कस का खिलाड़ी है जो सर्प के फनों पर नृत्य कर सके। अब देखिए सर्प के जो फन होता है बहुत चिकना होता है, कभी भी फिसल कर गिर सकता है। अरे हम तो चलते चलते मार्बल के इस पे फिसल जाते हैं। तो सर्प के फनों पर केवल भगवान कृष्ण चल नहीं रहे थे, नृत्य कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण। गोवर्धन पर्वत उठाया तो अगर सर्कस भी देखना है तो इस प्रकार का सर्कस देखिए, भगवान की गोवर्धन लीला और कालिया दमन लीला, तो वो है इसके अंदर। कोई व्यक्ति यदि सोचे कि मुझे हास परिहास कॉमेडी, कुछ कॉमेडी मेरे मन को अच्छा लगता है तो वो मुझे चाहिए, तो कितना है इसके अंदर। जैसे रामायण के अंदर ये एक कथा है कि जब युद्ध हो गया था तो युद्ध के पश्चात सारे जो बंदर थे वानर वो सब एकजुट गए और सारे वानर एक दूसरे को पूछ रहे थे कि मैंने पता है कितने सैनिकों को मारा और रावण के, और सब अपनी गिनती बता रहे थे इतने को मारा, ये ऐसे मारा वैसे मारा। तो उसमें से एक बंदर था, वो चुपचाप बैठा हुआ था। तो वो जो बंदर था वो केवल कूदने फांदने के लिए था, वो कुछ करता नहीं था इतना ज्यादा। तो सब लोग उसको, तुमने कितना मारा थोड़ा बताओ, कुछ किया रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए, कुछ किया, कुछ सैनिकों को मारा? तो उसने बताया, मैं बताऊंगा तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी सबकी, मैंने क्या किया। तो वानर कहता है कि एक सैनिक का मैंने दाहिना हाथ काट दिया तलवार से। तो सब लोग को पहले आश्चर्य हुआ कि ये व्यक्ति किसी का दाहिना हाथ भी काट सकता है। और उसने कहा, अभी मैं खत्म नहीं किया हूं, दाहिना हाथ काटा, उसके बाद में उसका बायां हाथ भी काटा मैंने, पूरा दाहिना बायां दोनों हाथ अलग कर दिया उसका। तो सब लोग अभी सुनने लगे, ओह अच्छा। तो फिर उसने कहा कि इतना ही नहीं, उसका मैंने पैर भी काट दिया, पहले दाहिना पैर फिर बायां पैर, दोनों पैर काट दिया। तो एक बंदर ने पूछा कि इतना करने की क्या आवश्यकता थी, अरे केवल एक उसका सर काट देते तो खत्म हो जाता था भाई। तो उसने कहा, वो पहले से किसी ने कर दिया था, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा अपनी तरफ से कुछ डोनेशन। तो सब कुछ है भगवान कृष्ण और राम की लीला में। तो यहां पर इसलिए परीक्षित महाराज कहते हैं कि ये ऐसी औषधि है, ज्यादातर जो औषधियां होती हैं वो बहुत कड़ू होती है, लेकिन परीक्षित महाराज कहते हैं कि ये ऐसी औषधि है, मनोअभिरामात भव औषधि श्रोत्र मनोअभिरामात। और फिर वो कहते हैं, क उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्येत विना पशुघ्ना, कि कौन व्यक्ति है जो नहीं सुनेगा ये भगवान कृष्ण की लीला, वो व्यक्ति जो पशुघ्न है। अब हमारे आचार्य बहुत अच्छी उत्प्रेक्षा देते हैं इस शब्द पशुघ्न की। पशुघ्न कहते हैं, पशु तो आप जानते हैं जानवरों को कहते हैं पशु, और पशुघ्न कहते हैं जो जानवरों की हत्या करता है। तो जो जानवरों की हत्या करने में लगा हुआ है, जो मांसाहारी हैं कसाई हैं, ये भगवान कृष्ण की लीला का श्रवण नहीं करेंगे। और पशुघ्न का अर्थ ये भी है कि जो कर्मकांड में लगे हुए हैं, क्योंकि कर्मकांड में भी ये सारे जानवरों को बलि चढ़ाई जाती है, तो जो कर्मकांड में लगे हैं उनको भी पशुघ्न कहा गया है, तो वो भी भगवान श्री कृष्ण का लीला श्रवण नहीं कर पाएंगे उतनी तीव्रता से। और पशुघ्न का अर्थ है आत्मा को अपशोक कहा गया है, उससे पशु ये शब्द भी आया है, क्योंकि आत्मा में कोई शोक नहीं हो सकता क्योंकि वो सच्चिदानंद है। तो इसलिए आत्मा का एक और शब्द है अपशोक, जो बिना शोक के है। तो इसीलिए जो व्यक्ति जो अपने आत्मा का हनन करने के लिए जुटा हुआ है, पशुघ्न आत्मा का हनन करने के लिए, जिसने ठान लिया है कि मैं मेरी आत्मा का हनन करूंगा, आत्महत्या, ये लोग जो अपने शरीर की हत्या करते हैं उसे आत्महत्या नहीं कहते, जो भगवान का लीला श्रवण नहीं कर रहे जानबूझकर, वो लोग आत्महत्या कर रहे हैं वास्तविक रूप में। क्योंकि आत्मा की हत्या अन्यथा नहीं हो सकती। तो ये यहां पर परीक्षित महाराज वो गुणगान कर रहे हैं भगवान के श्रवण के विषय में कि किस प्रकार श्रवण करने मात्र से ये सारी जो चीजें हैं। और फिर वो बोलते हैं कि मैं विशेष रूप से क्यों श्रवण करना चाहता हूं, बाकी तो खैर छोड़ दीजिए। अब देखिए जो बाकी वहां पर ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे परीक्षित महाराज के साथ, वो भी परीक्षित महाराज के साथ साथ व्रत कर रहे थे। अब ऐसा नहीं थी कि बाकी ऋषि मुनि जो आए थे अन्य लोकों से, वो लोग आकर बैठे थे इस प्रतीक्षा में कि अरे तो 7 दिन इनके लिए कथा सुनाई जा रही है और ये राजा हैं तो राजा कुछ भंडारा वगैरह तो रखेंगे ही, तो चलो थोड़ा अपना प्लेट वगैरह लेकर आते हैं और 7 दिन थोड़ा कथा सुनने के बाद भंडारा वगैरह होगा तो उसका भी मजा ले लेंगे। वो भी बिना खाए पिए सोए परीक्षित महाराज के साथ। अब जो श्राप मिला था वो तो परीक्षित महाराज को मिला था, इनको थोड़ी मिला था। तो ये कह सकते थे अरे श्राप तो उनको मिला है, चलो टिफिन निकालो, हम लोग अपना थोड़ा बीच में ये सुना रहे कथा सुनाते सुनाते हम थोड़ा खाते रहेंगे। तो उन्होंने कोई टिफिन विफिन नहीं लाया था, स्लीपिंग बैग नहीं लाया था कि बीच में थोड़ा एक दोपहर का समय है अभी गंगा के तट पर अच्छी नींद आएगी तो वो कोई स्लीपिंग बैग या अपना टिफिन नहीं लाए थे वो भी साथ साथ। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि वो लोग जो अभागे हैं जो भगवान श्री कृष्ण की लीला श्रवण नहीं कर पा रहे, और मैं जो इतना भाग्यवान हूं, तो अपने विषय में कहते हैं और अपने वंश के विषय में कहते हैं कि क्यों मेरे लिए इतना आवश्यक है ये सुनना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए और मेरे वंश के लिए। तो वो कहते हैं पिता महा में समरे मरंजय देवाव्रताद्य तीरथ स्तिमिंगल दुरत्ययम कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन वत्स पदम स्मयत प्लवा। इस बहुत सुंदर श्लोक में परीक्षित महाराज वो गुणगान कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का कि किस प्रकार कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो मेरे पूर्वज थे अर्जुन युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव ये सारे जो मेरे पूर्वज ये सब लोग वहां पर किसके समक्ष खड़े थे, पितामह भीष्म की तुलना यहां परीक्षित महाराज कहते हैं कि वो तिमिंगला, ये पितामह भीष्म एक तिमिंगला मछली के समान थे। अब आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं तिमिंगला मछली कौन सी होती है? थोड़ा आपको बताते हैं कि पितामह भीष्म की तुलना तिमिंगला से क्यों की गई। तिमी एक मछली है जो दूसरे लोकों में पाई जाती है, यहां पृथ्वी लोक में तो इतनी पता नहीं है कि नहीं। ये मछली इतनी बड़ी है, इस मछली का साइज, ये तिमी मछली का साइज 800 मील, इतनी लंबी ये मछली एक है पाई जाती है, 84 लाख योनियों में से एक है। कितना? 800 मील लंबी। 800 मील कितना हो जाता है? मुंबई से दिल्ली 1000 मील है तो उसका 3/4 ले लीजिए तो इतनी बड़ी मछली उसको कहते हैं तिमी, और तिमिंगला कहते हैं उस मछली को जो इस तिमी को निगल ले जो इस तिमी मछली को अंदर निगल ले उसे कहते हैं तिमिंगला, और उसकी तुलना भीष्म पितामह से कर रहे हैं परीक्षित महाराज। वो कहते हैं कि इनके समक्ष खड़े थे अर्जुन युधिष्ठिर और अन्य भीष्म पितामह जो तिमिंगला के समान थे, और कर्ण की भी तुलना वो तिमिंगला से कर रहे थे। तो यहां पर बताते हैं परीक्षित महाराज ये संकेत दे देते हैं कि कर्ण का वध हुआ क्योंकि कितने सारे एक प्रकार से श्राप कर्ण को मिल चुके थे, उसके वजह से कर्ण अपना जो असली शौर्य है वो दिखा नहीं पाया। सबसे पहले तो इंद्र ने कवच और कुंडल ले लिया कर्ण का, जो कथा में आप जानते होंगे, दान में कवच कुंडल मांग लिया युद्ध के पहले। तो जो कवच कुंडल था जिसके वजह से कर्ण इतना शक्तिशाली हुआ, वो कवच कुंडल दे दिया कर्ण ने इंद्र को। और फिर कर्ण को ये श्राप मिला था परशुराम से कि अंत समय में जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है वो सब कुछ भूल जाओगे तुम। तो ये एक और जो मेडल था कर्ण का वो निकल गया था, एक एक मेडल निकल रहा था कर्ण का, कवच कुंडल निकाल लिया था, वो जो श्राप परशुराम ने दिया कि अंत समय में जो कुछ ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है वो तुम भूल जाओगे। और फिर घटोत्कच, भीमसेन जी का पुत्र घटोत्कच बीच में आया और इतने शूरवीरता से युद्ध कर रहा था कि कर्ण ने जो एक बाण अर्जुन के लिए निकाल कर रखा था वो कर्ण को घटोत्कच पर चलाना पड़ा। तो वो जो एक उसने निकाल कर रखा था अर्जुन के लिए, अर्जुन को मारने के लिए, वो भी चला गया, एक और मेडल निकल गया उसका। तो इस प्रकार से कहा गया। और फिर उसका जो रथ का पहिया था वो धस गया था जमीन में और उसके वजह से भी वो ऐसी स्थिति में था कि वो प्रहार नहीं कर पा रहा था अर्जुन के ऊपर। तो यदि ये सारी चीजें कर्ण को मिल जाती तो एक प्रकार से असंभव रहता अर्जुन को कर्ण के ऊपर विजय प्राप्त करना। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि ये सारी चीजें भगवान कृष्ण ने मेरे जो पूर्वज अर्जुन हैं उनके लिए सारी योजना बनाई ताकि ये लोग जीत पाए और पूरी बदनामी अपने ऊपर ली भगवान ने, सारी बदनामी भगवान ने अपने ऊपर ली। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अभी इसको मारो कर्ण को, जब ये निहत्ता है तब। अर्जुन भी देख रहे हैं भगवान के पास, अरे भाई ये तो युद्ध नियमों के विपरीत है। कृष्ण ने कहा कि मैं कह रहा हूं अभी मारो, जो भी बदनामी होगी वो मैं अपने सर पर ले रहा हूं। तो भगवान कृष्ण बदनाम होने के लिए राजी हो गए अर्जुन की रक्षा करने के लिए। इसलिए एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है कि विशेष रूप से कृष्ण और अर्जुन का जो संबंध था कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर, कृष्ण जो सारथी बने अर्जुन के, तो उन एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया था कि कैसे हर क्षण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा कर रहे थे। तो उदाहरण दिया है कि जैसे हमारी आंखें हैं और इन आंखों की रक्षा ये पलकें करती हैं। बहुत सुंदर उदाहरण है कि किस प्रकार से हमारी जो आंखें हैं, जब भी कोई खतरा आता है, कोई तिनका या हवा या लाइट या आग या जो भी कुछ आंखों में एक प्रहार प्रकार का हो, तो सबसे पहले इन आंखों की रक्षा कौन करते हैं? ये पलकें। बिना आदेश दिए ये पलक अपने आप आंखों की रक्षा करते हैं, तुरंत पलक बंद हो जाती है और आंखों की रक्षा होती है। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण पलक के समान अर्जुन की रक्षा कर रहे थे कुरुक्षेत्र की रणभूमि में। और एक बहुत सुंदर कथा आती है कि कौरव सेना में एक भगदत्त नाम का एक सैनिक था और ये भगदत्त, इसे एक वरदान मिला था। इसे वरदान ये मिला था कि इसे एक गदा मिली थी और इस गदा का प्रहार ये जिस किसी के ऊपर करता वो व्यक्ति को मरना ही। एक ऋषि से वरदान मिला था भगदत्त को, परंतु जैसे हर समय कंडीशन अप्लाई रहता है कि नहीं, तो वैसे ही जो भी वरदान मिलता है, श्राप मिलता है, उसमें एक कंडीशन रहता है। तो भगदत्त को ये वरदान तो मिला और उसके साथ ये कंडीशन था कि ये गदा को वो एक ही समय वो यूज कर सकता है, बस उसके बाद में कचरे में, कोई काम नहीं इसका, बस एक ही बार उसको किसी ऊपर प्रहार कर दिया वो हो गया तो खत्म, फिर उसके बाद उसका जो भी फल है वो नहीं मिल पाएगा उसको। तो अब हुआ ऐसा कि भगदत्त को दुर्योधन ने कहा कि तुम अपनी गदा निकालो और ये जब 8-9 दिन बीत गए थे तो अर्जुन को अब बहुत हो गया था। दुर्योधन कहा कि अब अर्जुन का वध करना ही है, तो उसने भगदत्त को कहा कि तुम अपनी गदा निकालो और छुपा कर जाओ इस गदा को, और जाके सबसे पहले पहला प्रहार अर्जुन पे करना सीधा। तो भगदत्त वो अपनी गदा लेकर गया, अपने रथ पर गदा लेकर अर्जुन की तरफ, और अर्जुन इस प्रकार से योद्धाओं का युद्ध वध कर रहे थे कि जैसे कोई मक्खियां मच्छरों को भगाता है, उस प्रकार से अर्जुन योद्धाओं का वध कर रहे थे। तो भगदत्त आया तो अर्जुन ने सोचा कि ये एक और आ गया, तो इसको मारने में क्या है। तो क्या हुआ, जैसे ही भगदत्त सामने आया तो भगवान कृष्ण ने रथ की जो लगाम थी वो अपने दोनों हाथों में ली। एक हाथ से पहले लगाम लिए थे वो, जैसे ही भगदत्त सामने आया तो दोनों हाथों में लगाम ले ली भगवान ने, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है। तो भगवान जान गए कि भगदत्त आ गया, तो भगवान ने अपने दोनों हाथों से लगाम ली और भगवान रथ को इतनी तेजी से घुमाने लगे, एक तरफ एक क्षण वो रथ इस तरफ था और दूसरी क्षण रथ उसकी दूसरी तरफ विपरीत दिशा में ऐसे घुमाने लगे भगवान रथ को, और गोल गोल यहां वहां कभी इस दक्षिण दिशा में, कभी उत्तर दिशा में, कभी पश्चिम दिशा में, इस प्रकार से गोल गोल अपने रथ को ऐसे घुमाने लगे कि अर्जुन खड़ा होके देख रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, ये अचानक फोर्थ गियर में गाड़ी क्यों चली गई, कि अरे भाई एक जगह रुको ताकि मैं मारूं इसको। और भगदत्त देख रहे क्या हो रहा है कि अचानक ये इतना फास्ट कैसे जा रहा है रथ। तो भगदत्त अपना वो गदा निकालता प्रहार करने के लिए, तो देखता कि अभी रथ यहां पर, अर्जुन यहां पर है, दूसरे क्षण रथ और किधर चला गया, उसके पीछे चला गया। तो इस प्रकार से भगदत्त भी घूम रहा था अपना गदा लेकर, और अर्जुन भी आश्चर्यचकित होकर भगवान कृष्ण को छोड़ दिए धनुष बाण और देख रहे हैं, ठीक है घुमाओ। भगवान कृष्ण को देख रहे हैं, भगवान घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं रथ को, और इतनी तेजी से घुमा रहे थे कि भगदत्त ने सोचा कि ये जब तक ये रथ रुकेगा नहीं मैं कैसे अर्जुन के ऊपर प्रहार कर सकता हूं। तो भगदत्त क्रोधित हो गया, किस पर, भगवान कृष्ण पर, कि ये सारथी ये घुमा रहा है इस प्रकार से रथ को, तो गदा लिया भगवान के ऊपर मारा। तो भगवान के ऊपर मारा तो भगवान तो अमर है, भगवान को क्या होना है, तो भगवान तो अधोक्षज हैं, अच्युत हैं, अमर हैं, भगवान को क्या होना है। तो गदा का प्रहार जैसे ही भगवान के ऊपर हुआ, भगवान तो उस प्रकार से आवृणन ऐसे ही बाहर आए, कुछ नहीं हुआ उनको। लेकिन भगदत्त ने सोचा अरे 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 ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई, और फिर भगवान ने रथ रोक दिया। अब कहा अर्जुन अब प्रहार करो। तो इस प्रकार से भगवान वो प्रहार अपने ऊपर लिए। अर्जुन ये याद कर रहे हैं, परीक्षित महाराज याद कर रहे हैं कि भगवान ने वो प्रहार अपने ऊपर लिया। महाभारत में वर्णन आता है कि एक ही बार, केवल एक ही बार एक प्रहार अर्जुन के ऊपर हुआ, पूरे 18 दिन के युद्ध में केवल एक ही प्रहार हुआ था। और वो कब हुआ था, जब एक नागपाश कर्ण के तुनीर में चला गया था, और वो कर्ण ने निकाला और वो नागपाश का टारगेट बनाया अर्जुन के माथे पर, अर्जुन के माथे को साधते हुए वो नागपाश कर्ण ने छोड़ा, और कृष्ण जान गए कि ये नागपाश जो है ये बिना मारे तो जाएगा नहीं, और जो लक्ष्य पर इसको साधा जाता है वो लक्ष्य को वो जीत कर ही आता है। तो कृष्ण ने फिर क्या किया, जैसे वो नागपाश निकला कर्ण के बाण से, कर्ण के धनुष से वो नागपाश जैसे ही निकला, तो भगवान कृष्ण ने अपने अंगूठे से रथ को दबाया, और जैसे ही अंगूठे से रथ को नीचे दबाया तो रथ धस गया। तो अचानक अर्जुन नीचे कैसे चला गया, तो जैसे ही रथ नीचे गया अर्जुन नीचे गए, तो वो माथे के बजाय मुकुट पर लगा वो नागपाश और केवल मुकुट नीचे गिरा, वही एकमात्र प्रहार अर्जुन के ऊपर हुआ था और उसी को भी भगवान कृष्ण ने बचा लिया था। एक पसीने की बूंद अर्जुन के चेहरे पर नहीं भगवान ने आने दी, एक रक्त का बूंद भी नहीं आने दिया। इस प्रकार से भगवान रक्षा कर रहे थे अर्जुन की, भक्तवत्सल। तो परीक्षित महाराज इसे याद कर करके इस प्रकार की भावना में भगवान कृष्ण के प्रति जा रहे हैं, और केवल यही नहीं, परीक्षित महाराज याद कर रहे हैं कि किस प्रकार से वही भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने मेरे जो दादाजी अर्जुन उनकी रक्षा इस प्रकार से की, वही भगवान कृष्ण ने मेरी भी रक्षा, मेरी माता के गर्भ में जब अश्वत्थामा ने वो ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो किस प्रकार से मेरी भी रक्षा उन्होंने की मेरी माता के गर्भ में। कहा गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण परीक्षित महाराज की रक्षा करने गए उत्तरा के गर्भ में, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं गए। अब भगवान श्री कृष्ण तो परमात्मा के रूप में भी हैं, तो यहां से यहां जाना ज्यादा शॉर्टकट था। उत्तरा के जो परमात्मा रूप में, वहां से गर्भ में जाना शॉर्टकट था लेकिन भगवान स्वयं जो बाहर उपस्थित थे, उत्तरा ने जब जाकर भगवान को कहा पाही पाही महायोगिन मेरी रक्षा कीजिए, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने निज रूप में उत्तरा के गर्भ में गए और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा ली उस ब्रह्मास्त्र का छेदन करने के लिए, और साथ साथ सुदर्शन को भी लेकर गए। और सुदर्शन को इसलिए लेकर गए कि यदि गदा नहीं काम करे तो ये काम करेगा, तो मतलब सिक्योरिटी के डबल इंपैक्ट, दो दो लेकर गए। तो परीक्षित महाराज ने भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन के साथ किया, ये कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन, भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन हाथ में लिए हैं, उस प्रकार से परीक्षित महाराज ने दर्शन किया। सबसे पहला दर्शन भगवान का सुदर्शन परीक्षित महाराज ने इस प्रकार से अपनी माता के गर्भ में किया, जब उनकी रक्षा की उन्होंने। तो परीक्षित महाराज इसे कैसे भूल सकते हैं, और इसीलिए वो यहां पर कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो सत्य संकल्प हैं, और उनके विषय में मैं इस प्रकार से सुनना चाहता हूं। और फिर परीक्षित महाराज अपने प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं कि जब भी प्रश्न पूछा जाता है तब जो वक्ता है वो अधिक उत्साहित होता है उसके उत्तर देने के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न परीक्षित महाराज वो सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं कि मैंने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण अवतरित होने से पहले उनके जो अंश बलराम जी शेष अनंत शेष उनका अवतार हुआ, और मैंने यह सुना है रोहिणय स्तनय प्रोक्तो राम संकर्षण त्वया देवक्या गर्भ संबंध, उनका संबंध कुछ देवकी के गर्भ से भी था। तो बलराम जी का संबंध, हालांकि रोहिणी तनय, बलराम जी को रोहिणी तनय कहा गया है, रोहिणी के नंदन, लेकिन उसके साथ साथ देवकी गर्भ संबंध भी है उनका कुछ। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक शिशु और वो दो गर्भ से बाहर निकले? तो यहां पर देखिए श्रीमद् भागवतम सारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट को ललकार रहा है। ये सारे साइंटिस्ट ने कुछ क्लोनिंग करके किसी को निकाला होगा बाहर, और ये सब जो करते रहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी क्लोनिंग और ये सारी चीजें। तो देखिए यहां पर हाई टेक्नोलॉजी देखी श्रीमद् भागवतम की, कि अभी तक हमने सुना था कि एक गर्भ से दो शिशु आते हैं, जुड़वा कहते हैं उन्हें, ट्विंस, कई बार तीन चार छह भी आ जाते हैं। तो एक गर्भ से दो शिशु सुना था, लेकिन एक शिशु दो गर्भ से कैसे आएगा? सुना है कभी? उसी शरीर में एक बालक दो गर्भ से पास होकर आ रहा है, और वो बलराम जी। बलराम जी पहले देवकी के घर में गए, और देवकी के घर में पहले बलराम जी क्यों गए? क्योंकि बलराम जी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त सेवक हैं। तो क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के परम सेवक हैं, इसलिए उन्होंने ये सोचा कि पहले देवकी के घर में जाकर देखता हूं कि कृष्ण के लायक है कि नहीं, प्रोग्राम करने लायक है कि नहीं जगह। तो पहले वो गर्भ में गए और वहां पर अनंत शेष को स्थापित किया। जैसे जब हम मंदिर बनाते हैं तो मंदिर बनाने से पहले किसे स्थापित करते हैं? अनंत शेष को। तो वही बलराम जी के अंश हैं। तो बलराम जी ने सोचा कि अभी भगवान श्री कृष्ण की स्थापना होने वाली है देवकी के गर्भ में, तो पहले मुझे जाके मुआयना करना होगा गर्भ का, और वहां जाकर अनंत शेष की स्थापना करनी होगी, और तब जाकर भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वहां पर आके आराम फरमाने वाले हैं, तो उसके लिए कुछ अच्छा व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसीलिए वो देवकी के गर्भ में गए, और वहां से फिर वो स्थानांतरित, गर्भ स्थानांतरित हुए रोहिणी के गर्भ में। तो ये परीक्षित महाराज को अचंभे में डाल रहा है, वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसा, वो रोहिणी तनय है और देवकी गर्भ संबंध भी कहा गया है। तो ये उनका पहला प्रश्न वो पूछ रहे हैं। और फिर आगे वो पूछते हैं, कस्मान मुकुंद भगवान पितुर्गेहात व्रजम गतः, कि वही भगवान श्री कृष्ण अपने अन्य अवतारों में उन्होंने जब वो प्रकट हुए तो वो अपनी बाल लीला वहीं पर उन्होंने की। जब राम के रूप में प्रकट हुए तो अयोध्या में बाल लीला की, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि जैसे ही पैदा हुए, पैदा होते ही बाल लीला और कहीं पर की इन्होंने। ये वहां से जाकर पितुर गेहात व्रजम गता, कि जो पिता का घर था, यहां पर पिता का घर वसुदेव का घर कह रहे हैं वो। अब कोई प्रश्न पूछ सकता है, भाई वसुदेव घर में कहा तो कंस के कारागार में थे, परंतु ग्रह संस्कृत में उसे कहा जाता है जब गृहिणी हो, तो कंस का कारागार भी यहां पर ग्रह कहा गया है, क्योंकि वसुदेव देवकी के साथ थे, गृहिणी थी, तो जहां पर गृहिणी होती उधर ग्रह होता है, तो कंस का कारागार भी ग्रह हुआ। तो ये पूछ रहे हैं कि अपने पिता के ग्रह से वो ब्रजम गतः, वो ब्रज क्यों गए, वहां पर क्यों ट्रांसफर किया गया? तो ये उनका अगला प्रश्न कि सारे अवतार अपनी बाल लीला वहां पर करते हैं, ये वहां पर क्यों गए? और वो ये कह रहे हैं कि वो डर के मारे नहीं गए, मैं जानता हूं कि वो भगवान है, इसलिए वो यहां पर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं मुकुंदो भगवान अपि, कि वो कंस से डर कर नहीं गए, क्योंकि उनको लीला करनी थी, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन सी लीला ऐसी थी नंद गोकुल में, ताकि सुखदेव गोस्वामी नंद गोकुल की कथा भी सुनाना प्रारंभ करें। कि आप ये मत सोचना कि मैं खाली कृष्ण की जन्म की लीला सुनने के लिए हम बैठा हूं, उसके पश्चात जन्म कर्म चमे दिव्यम सारी सुनाना है आपको। और भी वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस प्रकार कितने समय तक वो वहां पर रहे, और फिर वो पूछते हैं कि ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि कृष्ण ने अपने ही मामा का वध क्यों किया, भांजा मामा को क्यों मार रहा है? अब जो मामा थे कंस, वो मामा अलग अलग खिलौने भेज रहा था, सोचा कि भांजा गोकुल में है तो भांजे के लिए कुछ खिलौने भेजना चाहिए, तो क्या खिलौने भेज रहा था? सबसे पहला खिलौना कौन सा भेजा? पुतना। कितना बड़ा खिलौना था वो? 8 मील लंबा खिलौना। तो सबसे पहला खिलौना पुतना के रूप में भेजा। तो जैसे छोटे बच्चों की आदत होती है कि थोड़ी देर खेलते हैं खिलौने से, फिर क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण थोड़ा खेलते थे इन खिलौनों से, मामा के भेजे हुए खिलौने, और फिर तोड़ देते थे उसको, और फिर आगे चल के मामा को भी तोड़ दिया। तो परीक्षित महाराज का ये प्रश्न है, वो पूछते हैं कि मातुर आधत अर्हणम, कि अपने ही मामा का वध भगवान श्री कृष्ण ने क्यों किया? तो ये उनका अगला प्रश्न वो पूछते हैं। और फिर वो पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण केवल 11 वर्ष वृंदावन में रहे, मैंने सुना केवल 11 वर्ष, और ये सुना है कि वृंदावन के जो ब्रजवासी वो सर्वोच्च भक्त हुए भगवान के, तो केवल 11 वर्ष वहां पर क्यों रहे। अब आपसे यदि मैं पूछूं कि भगवान जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में थे तो उनकी आयु क्या थी, कोई जानता है? हाँ, 125 वर्ष। जय श्री राधा गोपीनाथ की। 125 वर्ष के वो थे, और जब उन्होंने इस धरातल को छोड़ा, पृथ्वी को, तो वो 129 वर्ष के थे। तो 11 वर्ष उन्होंने वृंदावन में बिताया, 18 वर्ष उन्होंने मथुरा में, और 100 वर्ष उन्होंने द्वारका में बिताया। यहां का एड्रेस भी द्वारका ही है। तो 100 वर्ष भगवान ने द्वारका में बिताया, तो हम प्रार्थना कर सकते हैं कि कम से कम 100 वर्ष, यहां का एड्रेस भी द्वारका है, तो कम से कम 100 वर्ष तो रहना चाहिए आपको यहां पर। तो इनका प्रश्न है कि भगवान ने ये द्वारका में जो 100 वर्ष बिताए, उसमें एक साधारण गृहस्थ जीवन की तरह उन्होंने अपना जीवन यापन किया। तो ये प्रश्न मुझे है कि ये एक साधारण गृहस्थी जीवन कैसे जी रहे थे। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण की बहुत अद्भुत ये सारी लीलाएं हैं कि भगवान श्री कृष्ण पहले गोपियों के साथ उन्होंने रास किया, और कितनी गोपियों के साथ? अनगिनत गोपियों के साथ। तो कोई व्यक्ति को यदि आप पूछो कि ना भाई शादीवादी की कि नहीं, नहीं मेरा गर्लफ्रेंड्स है मेरे काफी हैं। कितनी है? कोई काउंट नहीं है उसका। तो भगवान कृष्ण के अनगिनत ये गोपियां गर्लफ्रेंड्स। और कोई पूछे कि ठीक है अभी अभी शादीवादी हो गई? हाँ हो गई। अच्छा अच्छा, कितने से शादी हुई? 16,000, केवल 16,108। तो परीक्षित महाराज ये पूछ रहे हैं कि प्रश्न है कि ऐसा कैसे, ये द्वारका की ये सारी जो लीलाएं हैं, इतनी सारी पत्नियां और ये गृहस्थ लीला उनकी भगवान की, तो ये सब मैं जानना चाहता हूं। तो ये उनका अगला प्रश्न, और फिर वो आगे प्रश्न पूछते हैं। वो बीच में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी को कि मैं बहुत श्रद्धालु हूं ये सब सुनने के विषय में, ये मत समझना कि मैं केवल पूछने के लिए पूछ रहा हूं प्रश्न। जैसे कई लोग जब हम पूछते हैं कोई प्रश्न है किसी का, तो देखा कोई हाथ नहीं उठा रहा, तो ठीक है मैं उठा देता हूं। और कई बार जो प्रश्न होते हैं उसके अंदर भी कोई तत्व नहीं होता। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, अच्छा द्वारका में भगवान ने 16,108 रानियों के साथ विवाह किया, ठीक है, और 16,108 महल उन्होंने निर्माण किए, वो भी ठीक है, तो कितने बाथरूम थे? मतलब सब में अटैच टॉयलेट बाथरूम था कि कॉमन था? अब ऐसा लोग प्रश्न पूछते हैं। हमने कहा भाई क्या फर्क पड़ने वाला है आपको, आपका जो जन्म मरण का जो चक्कर है उसमें कोई आपको अंतर होगा? ये इसका उत्तर भी जानने से। एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि हमने वो गणपति जी की लीला सुनी है कि वो सर काट दिया था, पार्वती के जो पुत्र थे उनका सर काट दिया था, और फिर वो हाथी का सर लगाया गया और फिर वो गणपति के रूप में पूजे गए, तो वो तो लीला हमने सुनी, वो सर काट दिया और वो गिर गए, और शिव जी ने सर काट दिया था, वो गिर गया सर, तो पार्वती ने वो सर के क्या किया? तो हमने कहा फ्रिज में रख दिया। तो अब देखिए, अब यहां पर परीक्षित महाराज जो प्रश्न पूछ रहे हैं, परीक्षित महाराज ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं इनके जो उत्तर है वो श्रद्धा से श्रवण करना चाहता हूं, और वो अपने आप को गुणगान कर रहे हैं। देखो परीक्षित महाराज इस श्लोक में वो कहते हैं, वक्तुम अर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धाधानाय विस्तृतम, कि मेरे अंदर बहुत श्रद्धा है, ये मत सोचना कि मैं अश्रद्धालु हूं इसलिए आप उत्तर नहीं देंगे, इसलिए मैं ऐसा ही प्रश्न पूछ रहा हूं कि बहुत समय हो गया आपको बोलते हुए, तो थोड़ा आपको आपकी कथा को विराम देने के लिए मैं कुछ प्रश्न पूछूं, फिर थोड़ा आपको सांस लेने का समय मिलेगा, फिर आप उत्तर दीजिए। श्रद्धा के साथ मैं सुनूंगा, मेरे अंदर वो श्रद्धा है, तो वो अपने आप का गुणगान कर रहे हैं, इतनी प्रेरणा दे रहे हैं वो सुखदेव गोस्वामी को। अभी तक सुखदेव गोस्वामी शुरू नहीं किए और ऑलरेडी 9:30 बजने जा रहे हैं। तो परीक्षित महाराज प्रेरणा दे रहे हैं इतनी कि मेरे अंदर श्रद्धा है, मैं अपना गुणगान कर रहा हूं, खुद का गुणगान करते हुए कि मेरे अंदर श्रद्धा है, तो आप सुनाइए, विस्तार से सुनाते रहिए। और फिर ये बहुत सुंदर श्लोक में वो कहते हैं, नैषाति दुस्सह क्षुण्माम त्यक्तोदम अपि बाधते पिबंतम त्वद्मुखाम्बोजम च्युतम हरिकथामृतम, कि ये मत समझना हे मुनि सत्तम, हे गोस्वामी जी, ये मत समझना कि मुझे भूख प्यास कुछ लगी है, नए शाति दुस्सह क्षुण माम, हालांकि मैं इतने समय तक कुछ पिया नहीं हूं, खाया नहीं हूं, सोया नहीं हूं, तो ये मत समझना कि मेरे अंदर भूख प्यास कुछ है। और वो कहते हैं त्यक्तोदम अपि बाधते, कोई मुझे इसकी बाधा नहीं हो रही, क्योंकि पिबंतम, मैं पी रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पी रहा, मैं पी रहा हूं हर क्षण। और क्या पी रहा हूं? च्युतम हरि कथामृतम, आपके मुख से जो हरि कथामृत जो बरस रहा है उसे मैं पी रहा, और उसके कारण मुझे ना तो प्यास लग रही है, ना भूख लग रही है, ना नींद आ रही है। अब देखिए हमारी स्थिति बिल्कुल विपरीत होती है परीक्षित महाराज की तरह, कि परीक्षित महाराज को हरि कथा सुनने के वजह से ना प्यास लग रही है, ना भूख लग रही है, ना नींद आ रही है। और हमारी स्थिति कई बार क्या हो जाती है, हरि कथा में बैठते ही पानी या क्या प्रसाद में है आज, और सब कुछ जान लिया है तो नींद आना शुरू होती है। और यहां पर देखिए वो जो कहते हैं न एष अति दुस्सह, जो अति दुस्सह है, जो ये भूख प्यास लोगों के लिए अति दुस्सह है, जो टॉलरेट करना सहन करना वो मेरे लिए आसान हो गया। और विशेष रूप से परीक्षित महाराज, क्योंकि परीक्षित महाराज एक राजा थे, यदि हम परीक्षित महाराज के इतिहास में जाएं तो परीक्षित महाराज एक राजा थे, और राजा होने के नाते तो हर रोज उन्हें बड़े बड़े पकवान मिलते थे खाने के लिए, और ये जो व्रत इत्यादि करना ये सब उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया था। ये जो व्रत इत्यादि, ये जो लोग जंगल में रहते हैं वो ये सब नियमों का पालन करते रहते हैं, परंतु परीक्षित महाराज अब पहली बार इतना बड़ा व्रत लिए अपने जीवन में 7 दिन का, लेकिन ये पहली बार व्रत में, जैसे पहला जो निर्जल एकादशी होता है वो हम कभी भूलते नहीं, पहली बार जब निर्जल एकादशी करते हैं, मुझे याद है मैं वृंदावन में था और पहली बार निर्जल एकादशी का व्रत लिया मैंने, जब मुझे कुछ महीने हुए थे भक्ति में आए, और कहा गया था कि आज निर्जल एकादशी है, बोला यार बाकी एकादशी तो सुना था, ये निर्जल एकादशी क्या होता है, तो जल नहीं पीना, तो मुझे लगा खा सकते हैं, तो मैं बोला तो खा सकते हैं, नहीं अरे जल नहीं पीना तो खा कैसे सकते हैं, अच्छा तो फिर थोड़ा मैं 2 बार सोचा, बोला तो वृंदावन में तो करने से 100 गुना 1000 गुना ज्यादा उसका फल मिलता है, तो मुझे लगा 1000 गुना ज्यादा जल और वो प्रसाद मिलेगा फिर पता नहीं, तो फिर प्रण लिया करने का, तो वृंदावन में वो हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में हर घंटे वो घंटा बजता है, तो रात को पूरे दिन भर तो कैसे तो वो सहन किया उसको, और रात को जब सोने गया मैं तो हर एक घंटे का घंटा सुनाई दिया मुझे, और मैं काउंट कर रहा था, हाँ अभी 11, और फास्ट ब्रेकिंग टाइम 5:20 कुछ था, वो भी याद है मुझे। देखो फास्ट ब्रेकिंग टाइम अभी तक याद है, 5:20 था, तो अभी 11, 11 बार भजा है, वो काउंट कर रहा था, 11 है, 11 है, फिर अब 12 है, फिर 1 है, ऐसे। तो पूरे रात भर वो घंटा ही सुन रहा था मुझे, और पूरे रात भर जितने मैंने अलग अलग प्रकार के जूस पिए थे जीवन भर, अलग अलग प्रकार का नींबू शरबत, ये शरबत, रूह अफ़ज़ा, ये मिल्क रोज, वो सब जो भी पिया था, वो सब मन में सामने आ रहा है। और जहां जहां ना कोई झरने के नीचे स्नान किया था, नदी में स्नान किया था, यहां पर सब दिमाग में सामने घूम रहा है ऐसे। तो पहली जो एकादशी, निर्जल एकादशी हम करते हैं, वो कभी भूलते नहीं। और यहां पर पहली बार इतना बड़ा व्रत, अति दुस्सह ये कहते हैं कि जो अति दुस्सह है, परंतु उसके पहले वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं एश, वो कहते हैं एश का अर्थ है कि आप यदि रुक जाओगे तो ये भूख प्यास मुझे सताएगी, और यदि आप जारी रखोगे ये कृष्ण कथा तो ये भूख प्यास मुझे बिल्कुल सताएगी नहीं। तो इसके कहने का अर्थ है कि यदि हमें भी भूख प्यास से ऊपर उठना है तो नित्य रूप से कीर्तनीय सदा हरि, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप एक क्षण भी रुकना मत, जारी रखना, ताकि ये जो अति दुस्सह भूख और प्यास जो है इससे मैं बच पाऊं। और इसके आगे फिर सुत गोस्वामी जो सुना रहे हैं शौनिक आदि ऋषि को, सुत गोस्वामी कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने जब ये सारे वाक्य परीक्षित महाराज के मुख से सुने तो सुखदेव गोस्वामी फिर कृष्ण के विषय में अब कहना प्रारंभ करेंगे, और इसकी चर्चा हम कल सुबह करेंगे कि सुखदेव गोस्वामी जब अब प्रारंभ कर रहे हैं, परीक्षित महाराज ने ये सारे जो प्रश्न पूछे, इतनी आतुरता दिखाई और गुणगान किया सुखदेव गोस्वामी का और भगवान श्री कृष्ण का, तो वो सब श्रवण करने के पश्चात उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी आगे क्या कहते हैं, तो इसके लिए कल सुबह कितने बजे होगा, 8 बजे, कल सुबह 8 बजे हम प्रारंभ करेंगे श्री शुक उवाच से। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, शिल प्रभुपाद की। तो किसी का कोई प्रश्न तो होगा नहीं शायद, क्योंकि सारे प्रश्न परीक्षित महाराज ने यहां पर पूछ लिए, और थोड़ा समय भी हो गया है, 9:30 बज गए हैं, तो आगे का कार्यक्रम अभी प्रसाद है। अच्छा अभी कीर्तन होगा, कितने समय तक, डरिए मत, 15-20 मिनट खाली होगा और उसके पश्चात फिर प्रसादम होगा। जय श्रील प्रभुपाद की। है विशेष कारण है वसुदेव जी, तो उनके विषय में सुनेंगे किस प्रकार से उन्होंने कम से वार्तालाप किया और देवकी को बचाया। हरे कृष्णा।